इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई सफाई सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शाने हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी।
झूम झूम कर नाचती थी जो गोपिका बन, प्रभु से प्रीत लगाई कुर्बान गई उस पर राधा बन। शबरी की तरह प्रभु को भोग लगाती खाती खिलाती, हो जाती प्रभु में मीरा की तरह मगन। और कहती सखीरी मैंने पाए तीन रतन, बाबा मुरली और मधुबन। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, आदरणीय दादी जानकी जी को जितना बाबा से प्यार था उतना ही बाबा की मुरली से भी प्यार था। मुरली सुने बिना दादी जी अन्न का एक दाना भी अपने अंदर नहीं जाने देती थी। दादी जी मुरली को संकट मोचन कहा करती थी, अर्थात जो हमारे सभी दुख दूर भगा दे और हमारी सारी पीड़ा हर ले। ऐसी शक्ति बाबा की मुरली में है। परमात्मा की मुरली की धुन पर दादी नाचती गाती, जिसको ज्ञान डांस भी कहा जाता है, उस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और विशेष बाबा की मुरली को जन जन तक पहुंचाने की आप मधुबन हेडक्वार्टर में रहकर सेवाएं देते हैं। तो आज हम भ्राता जी से जानेंगे दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम दादी जी के विषय में आज बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप दादी जी के साथ बहुत संपर्क में आए, मुरली को लेकर के भी आप विशेष मुरली डिपार्टमेंट में रह कर के सेवाएं देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस संस्था के संपर्क में कैसे आए और आपने कैसे सोचा कि मैं इस संस्था में समर्पित हो सकता हूँ।
हम लौकिक में
जी
जब उत्तर प्रदेश में रहते थे
जी,
तो कानपुर के पास एक छोटा सा गांव था
जी,
और वहाँ पर एक नहर कैनाल चलती थी
जी।
वहाँ पर एक ओटसियर साहब आए, वो ज्ञान में चलते थे
जी।
1960
जी,
जबकि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाओं का यूपी और कई क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था
जी,
उसी समय उन्होंने हमारे गांव में ज्ञान देना शुरू किया
जी, जी।
और पिताजी लौकिक, माताजी और पिताजी इस ज्ञान में आए
जी।
साथ साथ मम्मा जब कानपुर में 1960 में आई, मातेश्वरी जो इस विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका थी
जी, जी।
जब वो कानपुर में आई तो उन्होंने पिताजी को साथ लेकर के उर्सियर साहब ने मम्मा को गांव में बुलाया
जी।
और गांव में जब आई तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 4 साल का ही था
ओके।
लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन मम्मा ने हमारे गाँव में इस ज्ञान का बीज डाला और बहुत से गांव निवासी गांव के भाई बहने ज्ञान में चले
जी।
तो पिताजी को बहुत धुन थी। जब वो ट्रांसफर होकर के ओटसियर साहब वहां से गए तो हमारे घर में ही गीता पाठशाला खुल गई और पिताजी उसको संभालते थे
जी।
तो मेरा बचपन इसी ज्ञान मार्ग से शुरू हुआ, परिवार के बीच में रहते रहते
जी।
और मैं पहली बार जब माउंट आबू आया तो उस समय पिताश्री जी अव्यक्त हो चुके थे
जी। जी
1971 में पहली बार मैं आया, जब मैं 9th में पढ़ता था, 15 साल की उम्र थी और जब मैंने दादी और दीदी को देखा, उनकी पालना देखी, एक 1.5 महीना मैं यहाँ रहा स्कूल की छुट्टियों में, तो यहाँ के वातावरण में, यहाँ के भाई बहनों का स्नेह, यहाँ का जो एक अच्छा वातावरण मिला, माहौल मिला, तो मेरी इच्छा हुई कि ऐसे स्थान पर ही मुझे सेवा करनी है। और आते ही एक अपनेपन की फीलिंग आई कि हमारा अपना घर है, अपना स्थान है।
जी, जी।
उसको देख करके मुझे समर्पित होने की भावनाएं जागृत हुई। जबकि मैं अपने लौकिक परिवार में इकलौता बेटा था, तीन पिताजी तीन भाई थे, उनके बीच में मैं अकेला था। लेकिन मेरे अंदर था कि ऐसी दुनिया जब परमात्मा बना रहे हैं और इतना सुखमय संसार ये बना हुआ है, माउंट आबू का मधुबन का परिवार हमने देखा, बहुत आकर्षित हुए। और उसके बाद मैं केवल एक साल पढ़ने के लिए गया और फिर 72 में आकर के सेवाओं में समर्पित हो गया।
तो ये विशेष मुरली की जो सेवाएं हैं, ये आपको कैसे मिली?
मुरली की सेवाएं लेने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो स्टूडेंट ही था, पढ़ते हुए आया था, तो मैंने अपनी दादियों से अप्लीकेशन दी कि मुझे टाइप सीखनी है।
जी।
और मैंने मधुबन में टाइप सीखी, पहले हिंदी टाइप सीखी। और हिंदी टाइप सीखने के बाद दीदी जी जो हमारी मुख्य उस समय की प्रशासिका ही थी, मातेश्वरी जी के बाद दीदी मनमोहिनी को बाबा ने अपना साथ रखा था यहाँ पर हेडक्वार्टर में।
जी।
और दीदी बाबा के अव्यक्त होने के बाद मुरली को बहुत ध्यान से सुनती और पढ़ती थी और उसमें से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न निकालते थे।
जी जी।
तो जब मैंने टाइप सीखी,
तो हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि मुरली क्या होती है, उसको भी आप थोड़ा डिस्क्राइब करें। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मुरली हम किसको कहते हैं।
जो परमात्मा ने पिताश्री जी के माध्यम में प्रवेश होकर के ज्ञान दिया,
जी जी,
जो परमात्मा के महावाक्य ब्रह्मा बाबा के द्वारा उच्चारित हुए,
जी,
उसको
जी,
ही ज्ञान मुरली कहते हैं।
जी,
क्योंकि उस मुरली से, जैसे शास्त्रों में मुरली का गायन है, वो तो समझते हैं श्री कृष्ण ने काठ की मुरली बजाई और उसमें गोप गोपियां मुग्ध हो गए, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। लेकिन वो ज्ञान था, जिस ज्ञान से मनुष्य आत्माएं परिवर्तन हुए। तो जब परमात्मा पिता का इस सृष्टि पर अवतरण हुआ और वो प्रकाया प्रवेश हुए ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उनके मुख से जो महावाक्य उच्चारण हुए, वो नोट लिए गए और उसी नोट्स को फिर रिवाइज किया गया। जब वो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, पहले उनके मुख से हम डायरेक्ट सुनते थे, लेकिन उनके जाने के बाद वही महावाक्य फिर रिवाइज किए गए। और वो रिवाइज महावाक्यों में से उनका सार निकालना, उनका पूरे क्वेश्चन आंसर बनाना, उसको लोगों के आगे प्रस्तुत करना, तो दीदी जी, दीदी मनमोहिनी जी इसमें बहुत प्रवीण थी। और जब मैं आया टाइप सीखी तो कहा तुम पहले सिंधी सीख लो, तो मैंने फिर उसको सिंधी भाषा को भी सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। और फिर साथ साथ दीदी जो नोट्स लेती थी वो मुझे देती थी कि जाओ अभी तुमने टाइप सीखी है, इसको टाइप करके आओ।
जी।
तो मैं उसमें से प्रश्न उत्तर जो दीदी लिखती थी मैं टाइप करता था, कार्बन कापियां निकालता था उस समय। और जब कार्बन कापियां निकल जाती थी तो दीदी जितने पत्र आते थे सेंटर्स के, उन सभी पत्रों का उत्तर देने के लिए कहती थी, एक तरफ मुरली के प्रश्न उत्तर होने चाहिए, बाबा का ज्ञान रत्नों का खजाना होना चाहिए, और दूसरी तरफ पत्रों का सार में जवाब होना चाहिए।
जी।
तो दीदी के साथ ये सेवा मुझे करने का सौभाग्य 73 में ही मिल गया था।
ओके।
और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरी डिपार्टमेंट मेरे को 76 में मिली। और जब डिपार्टमेंट मिली तो उसके बाद दादी जी मुझे गाइड करती थी कि इसको किस तरह से सेटिंग करनी है, कैसे इसमें उसका सार लिखना है, प्रश्न उत्तर लिखना, क्योंकि पहले जो बाबा की मुरली चली, महावाक्य चले, वो तो ओम शांति से प्रारंभ हुआ और याद प्यार नमस्ते में पूरा हुआ।
जी।
उसका सार क्या है, बाबा क्या कहना चाहते, उसका भाव क्या है, उसको स्पष्ट करने के लिए दादियों ने मुझे प्रेरित किया और सिखाया कि पहले उसका हेडिंग लिखो, उसका एसेंस लिखो, फिर उसके क्वेश्चन आंसर बनाओ, फिर उसमें मूल जो धारणा की बातें हैं वो लिखो। तो ये प्रारंभ में हमने 76 में शुरू किया।
जी।
और फिर धीरे धीरे इसमें और नवीनता एडिशन होती गई। मुरली तो बाबा की वही है, लेकिन नई नई आत्माएं आती हैं और कईयों के पास बहुत कम समय होता है।
जी।
पूरा एक घंटे पूरा एक घंटा पूरा एक घंटा वो मुरली सुने, समझ पाए। और कहते हैं कई बार, कई लोग कहते हैं हमें फोन पर कोई सार सुनाओ आज बाबा क्या कहते हैं, तो इसलिए दादियों ने फिर ये शुरू कराया कि सार में उनको पता चल जाए। तो इसलिए ये सेवाएं हमने शुरू की 76 से। और फिर धीरे धीरे अव्यक्त बाबा का तो पार्ट शुरू हुआ था 69 में, और बाबा के जब महावाक्य चलते थे तो उनको नोट करने का, उनको टाइप करने का, उसकी मुरली तैयार करने का पूरा सेवा दादी ने हमें दी। और वो मुरलियाँ जो अव्यक्त बाप दादा की गुलजार दादी के माध्यम से चली हैं, वो मुरलियाँ भी 48 ईयर्स की हैं हमारे पास, रिकॉर्डेड हैं सारी, प्रिंटेड भी हैं
जी।
और साथ साथ साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो महावाक्य चले वो 5-6 साल के जिस जो हमारे पास रिकॉर्ड में थे वो रिवाइज किए जाते हैं
जी। फिर दादी जानकी जी के संपर्क में आप कब आए, कब पहली बार आप दादी जानकी से मिले?
दादी जानकी जी से मेरा परिचय 72 में ही हुआ था
जी,
क्योंकि दादी का ज्ञान रत्नों से बहुत स्नेह था
जी,
मुरली का बहुत अच्छा मनन चिंतन करती थी और मुरली को पढ़ करके वो बड़ी अच्छी अच्छी क्लासेस कराती थी। और दीदी मनमोहिनी और दादी दोनों सखी थी
जी,
दोनों का बहुत प्यार था आपस में। बाबा की मुरली सुनने के बाद क्लास में दादी प्रकाशमणि जी मुरली सुनाती थी और दीदी उसके नोट्स लेती थी, फिर जानकी दादी को बुला करके उसकी गहराई क्या है, बाबा क्या चाहते हैं, उस पर आपस में रूह ध्यान करती थी
जी, जी।
और मुझे कहती थी ये सखी स्नेह है, हम दोनों सखियां ये ज्ञान की रूह ध्यान करती हैं
जी, जी।
और ये ज्ञान की जो रूह ध्यान करती है इस पर जानकी दादी बहुत अच्छी क्लासेज कराएगी। तो जो भी हमारी क्लासेज होती थी, क्योंकि उस समय ट्रेनिंग शुरू हुई थी बाबा के अव्यक्त होने के बाद, टीचर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी, बड़े ग्रुप्स आते थे और अलग अलग उनकी भट्टियाँ उनकी ट्रेनिंग होती थी
जी, जी।
तो जानकी दादी उसकी मुख्य टीचर थी।
अच्छा।
और मुरली की स्टडी करके वो बड़े अच्छे अच्छे मनन चिंतन करके क्लास कराते थे
जी, जी।
तो दीदी मुझे कहती थी जानकी दादी जो क्लास कराती है तुम उसको नोट करो अपने पास, और वो नोट करके उसका एसेंस मुझे टाइप करके दो
जी।
तो ऐसे करके दादी के समीप आने का मुझे सौभाग्य।
राता जी, जो दादी जब मुरली सुनते थे तो उस पर बहुत मनन चिंतन किया करते थे, तो उसमें से बहुत सारी बातें जैसे सच्चाई, सफाई, सादगी और ऐसी बहुत सारी बातें दादी निकालते थे मुरली में से, और उसमें भी कहते थे सखीरी मैंने पाए 3 रतन, बाबा मुरली मधुबन। तो ये इनका क्या मीनिंग है
दादी? ऐसा है, दादी जी का जब मंथन चलता था तो बड़ा नए ढंग से होता था।
हाँ।
और दादी बहुत अंडरलाइन उसको करती थी कोई शब्दों को, और कई बार मुझे बुलाती थी अपने पास, अपने बाजू में बिठाती थी कि ये बात तुमने कहाँ से लिखी, ये कब बाबा ने बोली, क्योंकि बाबा ने तो साकार में मुरली जब चलाई तब मैं तो था नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ। तो मैं कहता था दादी बाबा की मुरली में ये पॉइंट्स हैं, कहती थी आज ये नई मैंने सुनी।
अच्छा।
उनको इतना नवीनता उसमें लगती थी क्योंकि उनका मनन चिंतन उस पर चलता था, और फिर उस पर वो क्लास कराती थी। तो जैसे एक बार बाबा की मुरली में आया कि बच्चे हंस जो है ना वो तैरता भी है उड़ता भी है, तो आप बच्चों को भी इस संसार सागर में तैरना सीखना है
जी,
और फिर उड़ना भी सीखना है
जी,
हंस की तरह आपकी जीवन होली हंस होनी चाहिए। तो दादी जी को ये बहुत अच्छी बात लगी, जो पढ़ी उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया कि आओ मेरे पास, ये तुमने कहाँ से निकाला, था तो बाबा के महावाक्यों में ही। फिर ऐसे ऐसी जब भी बातें आती थी तो मुझे कहती तुम बहुत वंडरफुल है, कहाँ से पॉइंट्स निकालता है, कैसे लोगों को पहुँचाता है, मतलब दादी का इन महावाक्यों पर बहुत ध्यान जाता था। और वो फिर क्लास में उसी नवीनता के साथ सुनाती थी, जिससे उनकी क्लासेज जो चलती थी, कोई भी क्लास ऐसा कोई नहीं कहेगा रिपीटेड है
जी, जी।
क्योंकि मैंने 72 से लेकर के आज तक जितनी दादी की क्लासेज हुई है सब टाइप की, जैसे अव्यक्त बाबा की मुरलियां हमने टाइप की, ऐसे दादी जी की सारी क्लासेज भी टाइप की
जी, जी।
और उसमें हर एक क्लास में नवीनता, हर एक क्लास में अच्छा चिंतन था उनका। यहाँ से जब वो लंदन गई विदेश सेवा में गई, तो दीदी जी ने एक बहन की ड्यूटी लगाई, ब्रजरानी बहन वहाँ रहती है लंदन में, उनको कहा कि जब दादी जी क्लास कराएं तो तुम उसके नोट्स लो, क्योंकि उस समय ये सिस्टम नहीं थी टेप करना रिकॉर्ड करके भेजना, तुम उसके नोट्स लो और नोट्स लेकर के राजू को भेजा करो
जी, जी।
तो जब भी लंदन में भी क्लास होती थी तो मेरे पास वो नोट्स आते थे और मैं उसको टाइप करके दीदी को भी देता था और सेंटर्स पर भी भेजता था
जी।
तो ये टाइप किया और सभी रिकॉर्डेड हमारे पास टाइप किए हुए सभी उनकी क्लासेज हैं, वो सारी इकट्ठी हुई हैं। हमने कई पुस्तकें भी 7-8 वॉल्यूम भी छपाए हैं ज्ञान सरिता के नाम से, और भी बहुत सारी क्लासेज हैं जो अभी भी पत्र पुष्प के माध्यम से मैं सबके पास भेजता रहता हूँ। हमारी तीनों दादियाँ, दीदी तो बहुत गुप्त रहीं, दीदी का पार्ट ऐसा था कि दीदी गोपिका थी
जी।
बाबा से उनका बहुत प्यार था, और बाबा के प्यार के कारण बाबा की मुरली को ग्रहण करना, सुनना, समझना, उसके अनुसार वो योग करती थी, योग में बहुत प्रवीण थी, लेकिन उन्होंने कभी क्लास नहीं कराई
जी। जी,
दीदी के साथ जानकी दादी और प्रकाशमणि दादी का दो का पार्ट रहा।
हाँ, तो
प्रकाशमणि दादी जब मुख्य प्रशासिका बनी तो दादी ने भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस कराई
जी।
और गुलजार दादी जी जो हृदय मोहिनी दादी हमारी अभी मुख्य प्रशासिका हैं, वो भी बाबा का रथ थी, लेकिन साथ साथ उनके पास भी बहुत अच्छा खजाना था, अपना चिंतन था, तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस कराती थी। क्योंकि यही तीन दादियां थी जो क्लासेस बहुत अच्छे कराती थी, और चौथी दादी भी थी हमारी चंद्रमणि दादी
जी,
उनकी भी बहुत अच्छी धारणा की क्लासेज होती थी। तो ये सब क्लासेज टाइप करने का चांस मुझे मिलता था, क्योंकि जब क्लास होती थी, जब भट्टी होती थी, तो दीदी मुझे बुला कहती थी जाओ तुम पीछे बैठ जाओ और जो टाइप जो ये सुना रही है तुम नोट करके आओ
जी,
और फिर मुझे टाइप करके दो। तो ये सेवा मैं करता रहा। तो दादी जी के पास मैंने देखा, बाबा इनको कई बार साकार में कहते थे, जानकी दादी को, कि बच्ची के पास अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात हैं, ये जवाहरी है, धनी है
जी।
और बहुत अच्छा ज्ञान चिंतन करके दान करना आता है
जी।
एक बार अभेक बाबा ने कहा था बच्ची के पास इतने गुण हैं जो इसके कर्मों से गुणों का दान होता है।
अच्छा।
मनसा से शक्तियों का दान करती है
जी, जी।
वाचा से ज्ञान का दान करती है और कर्मणा से गुणों का दान करती है। तो बाबा अभेक बाबा कई बार इनकी विशेषताएं सुनाते थे और मैं देखता था दादी जानकी को, इनका अपनी मनसा पर बहुत कंट्रोल था
जी।
जो सोचना है उतना सोचना, कभी कभी
उनको मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड
जी
कहा गया।
जब ये मुख्य प्रशासिका बनी, जब 2007 में दादी प्रकाशमणि जी ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के पहले 5 दिन पहले मैं इनके साथ लंदन में था
जी जी।
और लंदन में हम दोनों आपस में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, ज्ञान की बातें हो रही थी, और मैं लंदन अमेरिका हो करके दादी के पास आया था, छुट्टी ले रहा था, मधुबन से फोन आया कि दादी जी सीरियस हैं, दादी प्रकाशमणि जी
जी।
ये 20 अगस्त की बात है
जी, जी।
हम बैठे थे 2007 20 अगस्त को दादी के साथ लंदन में
जी।
उसी समय यहाँ से प्रताप भाई का, निर्भय भाई जी का फोन आया कि दादी जी सीरियस हैं और मैं हॉस्पिटल में अहमदाबाद लेके जा रहा हूँ, फिर मैं समाचार दूंगा। तो दादी जानकी मुझे कहती हैं कि राजू तुमको तो भी जाना है मधुबन, तुम जाओ, और फिर फोन पर पूछती हैं मैं भी आ जाऊँ। तो यहाँ से आया जवाब कि दादी आप एक दो दिन रुक जाओ और राजू भाई को भेज दो। तो मैं तो वहाँ से यहाँ आ गया मधुबन
हाँ।
लेकिन मेरे पीछे ही फ्लाइट से दादी जानकी भी आ गई। और जब यहाँ आई तो दादी के सामने ही बड़ी दादी जी ने, प्रकाशमय दादी जी ने शरीर छोड़ा। उनके शरीर छोड़ने के बाद जानकी दादी सह मुख्य प्रशासिका के रूप में पहले थी, वो मुख्य प्रशासिका बनाई गई
जी, जी।
और मुख्य प्रशासिका का कार्यभार जब उन्होंने संभाल लिया तो उसके बाद जैसे दादी ने चलाया था यज्ञ को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बाद दादी ने इस यज्ञ को बहुत व्यवस्थित रूप से चलाया
जी,
दादी प्रकाशमणि जी ने, और इसका बहुत विस्तार किया
जी।
जानकी दादी विदेश की सेवाओं के 40 साल तक अनुभव किए थे, भारत के अंदर सेवाएं कैसे चलती हैं, क्या हो रहा है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था
जी,
लेकिन
जी।
जब यहाँ आई और उनको जवाबदारी मिली तो उन्होंने दादी जी के साथ सेवा करने वाले भाइयों को अपने साथ लिया।
अच्छा।
जिसमें मैं मुरली की सेवा करता था, एक दूसरे भाई हमारे अकाउंट की सेवा करते थे, उन सबको साथ लिया और कहा तुमने जो सीखा है, जो दादियों ने तुम्हें सिखाया है, वो इसे ही तुमको करना है। अगर कोई बात पूछनी है, बतानी है, तो मेरे पास आ जाना, लेकिन मैं उसमें कोई करेक्शन नहीं करूंगी। जैसे आप कर रहे थे वैसे ही आप सब करो। तो यज्ञ को स्मूथ चलाने के लिए इन दादियों ने 4 बातें हम लोगों को बहुत विधिवत सिखाई और करके दिखाया। पहला, एक उनका निस्वार्थ प्यार, स्नेह था
जी।
स्नेह के कारण जब भी कोई बात कहती थी तो कोई टाल नहीं सकता था, मना कह दिया तो हो जाएगा
जी।
और स्नेह के साथ उन्होंने को विश्वास बहुत था
जी।
कि ये लोग जो कर रहे हैं, इतने दिन से यज्ञ में रह रहे हैं, चला रहे हैं, ये बहुत एक्यूरेट चला रहे हैं, अच्छी तरह से चला रहे हैं, इसलिए इसमें कोई हमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो दादियों ने विश्वास बहुत रखा, और खास करके दादी जानकी जी का जो विश्वास था ना, उसके कारण हर एक बहुत एक्यूरेट काम करता था। और तीसरी विशेषता थी, उनके पास समझ बहुत थी, परखने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी, कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो करेगा या नहीं करेगा, वो भी परख लेती थी
जी।
और ऐसे कह देती थी, मान लो मैं गया उनके पास और कई समाचार इधर उधर से उन्होंने सुने हुए हैं, बहुत प्यार से मैं जब नोट्स लेने लगते कहते नोट्स नहीं लो, मेरे सामने देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो। और मैं उनको बहुत प्यार से, दादी मुझे सुनाती जाती थी, मैं ऐसे एक टिक होकर के सुनता था और कम से कम 8-10 पत्र उनकी बुद्धि में जो होते थे मुझे ऐसे ही सुना देती थी और सुनाने की बात कहती थी, देखो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये है, अभी तुम जाओ इन सबको जवाब दे दो।
अच्छा,
इतना विश्वास रखा कि जो मैंने इसको सुनाया है इसको ग्रहण हुआ और जा करके सब जवाब देगा। तो मैं आता था सब याद करके, फिर एक एक को याद करके पत्र लिखता था, फिर अचानक बुला के पूछती थी, तुमने फलाने को जवाब दिया, क्या जवाब दिया, ले आओ। तो ऐसे पूछ भी लेते थे। तो एक तो उनका स्नेह था, दूसरा उनके अंदर सबके प्रति बहुत विश्वास था, और तीसरा एक सम्मान देने की अच्छी भावना थी
जी, जी।
और चौथा उनके अंदर समझ थी, समझ करके हर एक की नेचर को, हर एक के अंदर क्या इच्छाएं हैं, उनको क्या जरूरत है, उसको समझ करके उनको हैंडलिंग किया। इन चार विशेषताओं के आधार से संगठन को उन्होंने एक करके रखा, इसके कारण इतना विस्तार किया। 13 वर्षों तक मुख्य प्रशासिका के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला, 2007 से लेकर के 2020 तक। और उस कार्य व्यवहार में कोई भी अंतर आने नहीं दिया, जैसे चला था उससे भी अच्छा चलाने का उन्होंने प्रयास किया। उनकी इच्छा यही रहती थी कि भंडारा और भंडारी यज्ञ के अंदर भरपूर रहना चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए वो योग के प्रयोग करते थे। कोई विघ्न आता था उसका वर्णन चिंतन न करके वो मनसा सेवा करते थे, इसलिए मनसा सेवा के आधार से यज्ञ निर्विघ्न रहा।
भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गहराई की बातें दादी जी के विषय में आपने बताई, लेकिन ये कड़ी यही समाप्त नहीं होती है। हम अगले एपिसोड में दादी जी के बारे में और भी आपसे जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। हम राजू भाई जी के साथ दादी जी के जीवन के और भी पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।